फिर फरमाया فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما فأراد بس ارادہ کیا بس چاہا ربو کا تمہارے رب نے اس لیے تمہارے رب نے ارادہ کیا کس لیے فکانا ابوہما صالحا کیونکہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ نیک لوگوں پر اور نیکی کرنے والوں پر اللہ کو کتنا پیار آتا ہے. ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے پیار کرے, اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے, اللہ کی نظر عنایت ہم پر ہو. تو یہ جو فا ہے نا, فا کے اندر پوری کہانی ہے. اور وہ کیا ہے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان دونوں یتیم لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اور باپ کی نیکی کا اثر گھر والوں پر, خاندان پر, ان کی زندگی میں نہیں بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. تو تیرے رب نے ارادہ کیا, پس تیرے رب نے چاہا, اَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, کہ وہ یہ دونوں بچے جو ہیں وہ پہنچ جائیں. آپ کو پتہ ہی ہے اَن يَبْلُغَا کے بعد نون جو ہے وہ گر چکا ہے مضاف علیہ کا, ہے نا. تو یہ دونوں بچے پہنچ جائیں, اَشُدَّهُمَا, اپنی جو ہے وہ جوانی کو, یہ دونوں بچے اپنے عروج کو پہنچ جائیں. جیسے شدت اشد جو ہے یہاں پر کیا ہے کہ جسمانی لحاظ سے, علمی لحاظ سے, عقل کے لحاظ سے وہ بچے جو ہیں وہ اپنے عروج کو پہنچیں, وہ بڑے ہو جائیں. ویستخرجا, اور وہ دونوں نکال لیں. خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا, لیکن اور الف سنتا, نون سنتا, یا سنتا ساتھ لگ گئے تو مانگنا, نکالنا. تو وہ یستخری جان, نون تھا وہ گر چکا ہے تسنیہ کا, کہ وہ دونوں نکال لیں کنزہما اپنا خزانہ. اور آپ کو پتا ہے کہ کنز جو ہے وہ ایسے خزانے کو کہتے ہیں جو جمع تو ہو لیکن چھپا ہوا بھی ہو. خزانہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو جمع کیا ہوا ہو, لیکن اس میں دوسری چیز کیا ضروری ہے کہ وہ پوشیدہ ہو. کنز کا پوشیدہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, تو اپنا پوشیدہ خزانہ جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ جب وہ جوان ہو جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جوان ہونے تک جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے کہ کاروبار, بزنس, جو بھی ان کے زندگی کے جو ہے وہ معاملات ہیں. لیکن وہ بستی کا حال یہ تھا کہ اگر وہ اپنے مہمانوں کو مہمان نوازی کے لیے قبول نہیں کرتی, ہے نا, مسافر بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں, اور تو بستی جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے, ان کو جو ہے وہ مانتی نہیں ہے, ان کو ان کی دعوت دینا, ان کو کھانا کھلانا, اس کو وہ مانتی نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو بچوں کا باپ مرد صالح تھا, وہ اللہ کے نزدیک اس کی نیکی اتنی مقبول تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد کو پورا کیا اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام کیا. اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھیے کہ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بعض اوقات جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اشد شدت کی جمع ہے, مراد وہ قوت ہے, وہ عمر جس میں انسان اپنی پوری قوت اور بھلے اور برے کی پہچان کے قادر ہو جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں یہ 25 سال کی عمر کا وقت ہے, کوئی کہتے ہیں 40 سال کی عمر کا وقت ہے. بہرحال اصل بات کیا ہے, حتی اذا بلغ اشدہ, ہے نا. اور قرآن میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے, حتی اذا بلغ اشدہ ہوا بلغ 40 سنہ. قرآن میں ایک جگہ کیا ملتا ہے کہ شدت کی عمر, جوانی کی عمر کیا ہے, کہ جب وہ 40 سال کا جو ہے وہ ہو جائے. تو پھر فرمایا رحمت من ربک, یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام ساتھ ساتھ یہ واضح کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ در حقیقت تمہارے رب نے ان یتیموں پر رحم کیا ہے, نہ کہ اس بستی کے مکینوں پر. بستی والے تو پہلے ہی کنجوس تھے, بخیل تھے, اخلاقی لحاظ سے وہ کمزور تھے. تو تمہارے رب نے جو یہ چاہا کہ یہ دیوار ان بچوں کے جوان ہونے تک قائم رہے, ताकि वो जवान होकर अपना खजाना जो है वो निकाल लें। तो ये क्या है, रहमत मिन रब्बिक, ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर किया गया है, और लोगों अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। और ये आज जो मेरा और आपका वजूद भी दुनिया पर कायम है, ये अल्लाह की रहमत और अनायत की बदौलत है, ना कि हमारे अमलों की वजह से। अल्लाह बड़ा नवाजने वाला है, रहीम है, शफीक है, और करीम है, और रहमान है। बस हमें जरूरत है कि हम उसको पुकारा करें, कभी या रहीम या रहमान या अल्लाह, या खालिकु या मालिकु या अल्लाह, है ना। तो अल्लाह को हम बार बार पुकारा करें। वमा फअलतुहु अन अमरी, फिर वो कहते हैं और मैंने इस काम को नहीं किया, फअलतुहु ये जो काम किया है ना, ये मैंने खुद अपने इख्तियार से नहीं किया, अन अमरी। और आपको पता ही है कि हमजा मीम रा और हमजा के ऊपर अगर फतह आ जाए तो इसके मानी क्या होते हैं, काम के, और अगर इसके नीचे जेर आ जाए तो इसके मानी क्या होते हैं, सख्त नापसंदीदा बात या काम के। तो ऊपर फतह आने से काम, और जेर नीचे आने से सख्त नापसंदीदा बात या काम। तो कहते हैं ये जो काम है ना जो मैंने किया है, तो और सिर्फ यहाँ पे इससे मुराद ये नहीं है कि ये दीवार के नीचे खजाना को छुपाना, दीवार को बनाने बना देना, सिर्फ ये मुराद नहीं है, बल्कि इन कामों में से कोई भी काम, जो काम भी उन्होंने किए थे, जैसे लड़के को कत्ल कर दिया और कश्ती जो थी उसको बिगाड़ दिया, उसमें सुराख कर दिया, ऐब डाल दिया, और फिर दीवार यतीमों की, यतीम लड़के जिनका बाप नेक था उस दीवार को खड़ा कर दिया। तो रहमतम मिन रब्बिक वमा फअलतुहु अन अमरी, और ये कुछ मैंने अपने इख्तियार से नहीं किया। तो इसके क्या मानी है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो काम भी होते हैं तो क्या है कि अल्लाह ही के इख्तियार से होते हैं, अल्लाह ही उनकी मसलहत को जो है वो खूब जानता है। और आप देख लीजिए कि आपने सूरत माईदा में ये बात पढ़ी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मोजात अता किए थे, और वो सारे मोजात के बारे में फिर साथ साथ क्या कहते थे, बेइज़्निल्लाह, शाबाश, तो कहते थे ये अल्लाह के हुक्म से हैं, ये अल्लाह की इजाजत से हैं। मतलब तो एक पैगम्बर जिसको अल्लाह ताला ने तशरी इल्म दिया है, शरीयत का इल्म दिया है, जो जाहिरी तौर पर हदायत और नेकी और बदी के रास्ते को वाजे करने का इल्म है, उसमें भी वो कहते हैं, और जो मौजात हैं उसमें वो क्या कहते हैं, फबिज़्निल्लाह। और यहाँ पे ये सारे काम करके जिनको अल्लाह ताला ने तकवीनी इल्म दिया था, जो आम नजर को समझ में नहीं आता, तो इस सिलसिले में भी वो ये बात कहते हैं कि ये अल्लाह की मशीयत की वजह से है। तो गोया के अल्लाह ताला जो है ये अल्लाह की मशीयत थी, वमा फालतुहू अन अमरी, और ये तीनों काम, कश्ती का तोड़ना, लड़के का कत्ल का होना, उनका उनको लड़के को कत्ल करना, और ये तीन बच्चों का जहां पे खजाना छुपा हुआ था जो उसके बाप ने छुपाया था उस पर दीवार को कायम करना, ये तीनों वाकयात दरअसल मशीयत इलाही के कामों में पोशीदा हिकमतों पर इससे रोशनी पड़ती है, पता चलता है। और फिर क्या कहा, ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ते अलैहि सबरा, ये है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सब्र ना कर सके। अब आप देखिए कि अब यहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो है वो एक बात कहते हैं, और वो ये है कि ये जो तीनों बातें हैं, तुमने मुझसे शुरू में ही वादा कर लिया था मूसा कि तुम जो है वो मेरा कहना मानोगे और तुम जो है वो सब्र करोगे, और तुमने तो कहा था कि मैं इल्म जो है वो सीखना चाहता हूं, और जब तुमने पूछा था कि हल अत्तबेऊ का आला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, और मैंने कहा था काला इन्नका लन तस्तती अमा या सबरा, और ये भी कहा था वह कैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कितने यकीन से कहा था, काला सतजिदुनी इंशा अल्लाहु साबिरन वला आसी लका अमरा। और फिर आगे और भी उन्होंने बातें कही थी, अगर मैं सवाल पूछूं तो फिर मुझे अपने से जुदा कर देना। तो आप देखें कि पैगंबर थे, लेकिन जो है वो वादा किया और इंशाल्लाह कहा, फिर भी जो है वो क्यों सबर ना कर सके, क्यों वो बोल उठे। तो मुफस्सरीन जो है उसकी जो वजाहत करते हैं वो ये है कि असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस इल्म से नवाजा था वो था तशरी इल्म और पैगम्बरी का इल्म, और वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के इल्म से टकराता था। अब फितरी सी बात है, एक लड़का खेल रहा है तो उसको कोई भी उठकर कत्ल कर दे, ये तो नहीं हो सकता ना। गैब का इल्म तो अल्लाह को पता है, या फिर जिसको चाहे और जितना चाहे जो है वो अता कर दे। तो असल बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म से वो चीजें जो थी वो टकराती थी। अच्छा, दूसरी अहम बात यहाँ पर जो जरूरी है, ये पूरा वाकया जो पढ़ा है मूसा अलैहिस्सलाम का और खिजर अलैहिस्सलाम का, और 60 से लेके 82 तक की जो आयात हैं, ये हमें क्या पैगाम देती हैं, इन सबका फिर निचोड़ क्या बनता है। इसमें पहली बात जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को इस वाकये के जरिए से सब्र और इस्तकामत की तलकीन की है। आप देखिए कि जो है वो सब्र के मुतल्लिक जो बात बहुत अहम है वो ये है कि जिस शख्स के अंदर सब्र की सिफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सरायत ना कर जाए, बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर ये सिफ रासिख ना हो सब्र और इस्तकामत की, ना वो अल्लाह का हक अदा कर सकता है और ना बंदों का। मैं और आप भी अमली जिंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं, है ना, कभी औरत परेशान होके कहती है कि मैं मरी क्यों ना जाऊं, कभी वो गालम गलोच, कभी वो बुरा भला, कभी वो खुला का मुतालबा, कभी शोहर तलाक के लफ्ज मुंह पर ले आता है, और लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत। जैसे कल ही एक औरत कह रही थी कि हमारे घर के हालात ऐसे हुए, इतने सख्त हैं कि लग रहा था कि कहीं कत्ल ना हो जाए हमारे घर में। तो मैं उस वक्त ये बात सोच रही थी, और मैं खुद भी हम आपस में, आप भी अपना अपना हम सब जायजा लें, तो असल बात क्या है कि सब्र की कमी, सब्र और इस्तकामत की। हालात बहुत खराब होते हैं और उस वक्त लगता है कि शायद छत गिर जाएगी, शायद पता नहीं मैं मर ही जाऊंगी, और ये हालात मेरे लिए बड़े सख्त है ना। लेकिन अल्लाह ताला किसी नफ्स पर उसकी वुस्सत से बढ़कर बोझ नहीं डालते है ना। तो पहली बुनियादी सिफत जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई और सहाबा को, वो क्या है कि जो है वो सब्र जो है ये सिर्फ रासिख करना मोमिन की मिराज है, इसके बगैर ना वो अल्लाह का हक अदा कर सकता है ना बंदों का। और इस सिफ्त को रासिख करने के लिए जो है वो जरूरी क्या है, कैसे ये सिफ्त रासिख हो, सब्र हमारे अंदर कैसे आए। अब ये है तो बड़ी अच्छी चीज, हम में से हर शख्स कहता है कि या अल्लाह तू मुझे सब्र दे दे, तो ये सब्र हमारे अंदर हम चाहते तो हैं पर आता क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि अकायद जो है ना, जितने अकायद हैं वो दिल के अंदर रासिख होने चाहिए। सब्र की बुनियाद और ईंटें जो है ना वो अकायद हैं, और जिसके अंदर अकायद जितने ज्यादा अच्छी तरह रासिख हों उतना ही उसकी जिंदगी में और उसके मिजाज में जो है वो सब्र पाया जाता है। क्योंकि सब्र जो है ना उसको ऊपर से चिपकाया नहीं जा सकता, ऊपर से अपने अंदर ऐसे ही पैबंदकारी नहीं इसकी की जा सकती, ये दिल दिमाग के अंदर रासिख किया जाता है। और रासिख करने का तरीका क्या है कि अकायद हमारे अंदर उतरे हुए हों। आप देख लें मक्की दौर में अकायद ही पुख्ता किए गए, मुसलसल सूरतों का नजूल है और अकायद जो है ना उनको सिखाया जा रहा है और उनको जो है उनके दिलों में बिठाया जा रहा है। तो अकायद ही जब कमजोर होते हैं ना तो फिर बुनियादी सिफात इंसान के अंदर पाई नहीं जाती। और ये जो अकायद हैं उसकी कुछ बुनियादें हैं, तो मसलन एक बुनियाद क्या है, जैसे अकीदा हम मजबूत करेंगे, ये जो पूरा वाकया हमें ये अभी हमने जितना पढ़ा है तो उसका निचोड़ क्या है कि दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह की इजाजत और उसके इरादे और मशीयत के तहत होता है। जब उसके इज्न और इरादे के बगैर एक जर्रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, तो फिर आपके जो हालात हैं, मेरे जो हालात हैं, किसी के घर मौत आ गई और किसी के घर जो है वो गम आ गए, किसी के घर खुशियां आ गईं, किसी के घर औलाद पैदा हो गई और किसी के घर पैदा हुई दुनिया से चली गई। कोई कहता है मुझे औलाद और नहीं चाहिए, ये क्यों अल्लाह ताला तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, ये बुढ़ापा और मैं तो चाहता ही नहीं, मैं चाहती ही नहीं। और कोई ये कहता है कि अल्लाह ताला तू मुझे क्यों नहीं औलाद क्यों नहीं देता ना। एक औरत जो है वो जैसे प्रेग्नेंट हो गई, कहने लगी कि ऐसे लग रहा है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मेरा शौहर मुझसे बहुत नाराज है कि तू प्रेग्नेंट क्यों हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगी, वो कहता है कि अच्छा अगर तू प्रेग्नेंट हो गई और मैं जो है ना तुम्हें फिर मैं तो हज पे चला जाऊंगा पर तुम्हें लेके नहीं अब जाऊंगा, मैं नहीं तुम्हारा अब इंतजार कर सकता। तो बड़ी परेशान के अब क्या करूं, अब देखें उस औरत का क्या कसूर है इसमें, है ना, कैसी मोमिल मोमिल और फजूल बातें लोग करते हैं। वो औरत अब पूछे कि अब मैं क्या करूं ना, तो क्या अब, मतलब क्या मैं जाया कर दूं। और अब देखें कि हज भी तो अल्लाह का दिया हुआ एक हुक्म और फर्ज है ना, तो जब अल्लाह ताला को भी तो पता है ना, अब अल्लाह ताला ने अगर किसी को वो कर दिया, मतलब अल्लाह ने उसको वो औलाद देने का फैसला कर लिया, तो आपकी एहतियातें और तदबीरें तो कुछ नहीं कर सकती, तो आप अल्लाह के फैसले पे राजी हो जाया करें। आप क्यों रोते हैं, आप क्यों बाल नोचते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं, हाय लोग क्या कहेंगे, मेरी उम्र क्या हो गई है और मेरे हालात ऐसे हैं, अल्लाह को तो ज्यादा पता है आपके हालात, है ना। तो इसी तरह एक लड़का जो था वो अपने माँ बाप से जो था वो नाराज था कि मेरी शादी क्यों देर से की, मतलब जब दुल्हन उसके घर आई तो वो इस बात पे नाराज था कि मेरी शादी बड़ी देर से हुई है ना। तो अब बेचारी दुल्हन का क्या कसूर, उसको क्या पता कि लड़के के माँ बाप ने शादी क्यों नहीं की और कितना अरसा मतलब उसके वो चाहता था और उसके वालदैन ने नहीं की, है ना। तो अब किसी का कसूर और नजला किसी पर आके गिरता है। तो इस सिलसिले में हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम सब जो है इस बात पर जो है वो सोचा करें कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है और अल्लाह की मर्जी से जो है ना वो कोई चीज हट नहीं सकती। आप पूरी कोशिश करें, कुछ भी जो काम आप करना चाहती हैं, जो अच्छे काम हैं, जो अल्लाह की बंदगी वाले काम हैं, जो अल्लाह की अतात वाले काम हैं, लेकिन इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह के फैसले जो है ना उनको चैलेंज ना करें। और दुनिया में जो कुछ भी होता है, आप लाख चाहें कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और लेकिन अगर फिर भी वो हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी चाहत से अल्लाह की चाहत जो है वो मैच नहीं की। तो जरूरी नहीं है कि अल्लाह की चाहत मेरी चाहत से मैच करे, लेकिन मेरी चाहत को अल्लाह की चाहत से मैच किया जाना चाहिए, मुझे अल्लाह के आगे सरनिगू होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के इज़्ज़त और इरादे के बगैर एक जर्रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। तो पहली बात हमें क्या पता चली, अल्लाह के इज़्ज़त इरादे और उसकी मर्जी के खिलाफ जो है वो कुछ नहीं होता और जो कुछ होता है वो उसके मुताबिक होता है। तो ये बात अपने दिले नादा को समझा दे, दिल की जड़ों के अंदर गहराइयों के अंदर इस बात को डाल दे। दूसरी बात जो पता चलती है वो ये है कि अल्लाह ताला खैर मुतलिक और हकीम है, और इस वजह से चूंकि अल्लाह ताला कुल खैर का मजमुआ है तो अल्लाह का कोई भी इरादा जो है ना वो खैर और हिकमत से खाली नहीं है। अगर वो बातिल को ढील देता है तो इसलिए नहीं कि वो बातिल से मोहब्बत करता है या इसलिए नहीं कि बातिल के आगे अल्लाह बेबस और मजबूर है, बल्कि इसके अंदर भी वो किसी खैर खैर की परवरिश करता है। उसके नतीजे में अल्लाह ताला कोई खैर हमारे सामने लाना चाहता है। अगर वो नेक लोगों को मुसीबतों में जो है वो मुब्तिला कर देता है, उस पर उन पर परेशानियों की बारिश होने लगती है, तो इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला अहले हक से मोहब्बत नहीं करता, नेक लोगों से उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि क्या है कि उस मुसीबत के नतीजे में अल्लाह ताला उसके लिए कोई खैर का बहुत बड़ा दरवाजा खोलना चाहता है जो उसको नजर नहीं आता। तो दूसरी बात क्या है कि अल्लाह के जितने फैसले हैं, अल्लाह ताला के जितने इरादे हैं, उन सब में जो है वो खैर जो है वो पोशीदा है। तो अपने दिल छोटे ना किया करें, परेशान ना हुआ करें। और बाज लोग कहते हैं कि मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मेरे मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, बाज कहते हैं कि हार्ट अटैक हो जाएगा, बाज कहते हैं कि बस मार ही डालें दूसरों को, क्यों ऐसे हो गया। तो दूसरी इससे क्या बात पता चली कि आपने पूरी कोशिश की लेकिन इसमें अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर जो है वो निकालेंगे। तीसरी बात यह है कि इंसान का इल्म बहुत महदूद है और इस वजह से वो अल्लाह के इरादे की हिकमत को जान नहीं सकता, उसको पता नहीं चलता कि मैंने तो फलां जगह रिश्ता, वालदेन कहते हैं कि फलां जगह रिश्ता हो जाए वो तो डॉक्टर है ना, और कितना अच्छा है, जाहिरी तौर पर आपको लगा कि वो लखनऊ के हैं तो वो दिल्ली के हैं तो वो इंडिया के हैं, जो जो आपने चाहा था वो सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, लेकिन रिश्ता तो वहां नहीं हुआ जो आपने चाहा था। तो यकीनन इसमें भी कोई खैर होगी ना, क्यों? इसलिए कि हमारा इल्म जो है वो थोड़ा है, हो सकता है कि हम जो चीजें उसमें ढूंढ रहे थे या हम जो समझ रहे थे वो हमारे लिए उसने वो मौजूद ही नहीं थी, अल्लाह ने कहीं और हमारे लिए रख रखी है ना। तो और अल्लाह के जितने इरादे हैं उनकी खैर, उनकी हिकमत अगर दुनिया में हमें पता नहीं भी चलती तो आखरत में जो है वो हमारे सामने आएगी, बेनकाब हो जाएगी। तो दुनिया में फिर एक मुसलमान का सही रवैया क्या है कि वो अल्लाह के तमाम फैसलों पर साबिर और शाकिर रहे और सबर और शुक्र करते हुए अपना फर्ज अदा करे और मुतमिन रहे कि आज की तलखियों के अंदर ही क्या है जो शेरीनियां छुपी हुई हैं, कल इंशाल्लाह उसके बड़े अच्छे रिजल्ट जो है वो मेरे सामने आएंगे। तो ये तीन बातें जो हैं वो जरूरी हैं जो हमारे अकायद को मजबूत कर सकती हैं और अकायद की बुनियाद बन सकती हैं। नंबर वन निचोड़ क्या कि अल्लाह के इज्न और उसके इरादे और मशीयत के बगैर कुछ वाकया नहीं होता, हत्ता कि एक पत्ता भी उसकी मशीयत और इरादे के बगैर हरकत नहीं करता। दूसरी बात यह कि अल्लाह का हर इरादा, अल्लाह का हर फैसला जो है वो हिकमत और खैर से माला माल है और भरा हुआ है, यकीनन उसमें कोई हिकमत है, अपने दिल को ये बात समझाएं। तीसरी बात यह है कि मेरा इल्म बहुत महदूद है और अल्लाह ने वो काम जो मुझे बजाहिर अपनी जो है वो फायदे में नजर नहीं आ रहा लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने जो हिकमत रखी है मेरा महदूद इल्म उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। और इस सिलसिले में मैं आपको एक वाकया भी सुनाती हूँ कि कहते हैं कि एक बादशाह था और उसका एक वजीर था, और बादशाह जो है वो होता है ना कि वजीर से आप सारी बातें करते हैं, तो वजीर से बातें करता था कि ये हो गया ये हो गया, ये मेरे हालात हैं ये मेरे हालात हैं। तो वजीर की आदत थी कि हर बात में आगे ये कहता जाता था कि इसमें भी कोई खैर होगी, इसमें भी कोई खैर होगी। बादशाह बाज औकात ऐसे हालात होते थे कि बगावत कर दी किसी ने और उसका खजाना कम हो गया या मसाइल पैदा हो गए या मुश्किलात उसके लिए खड़ी हो गई, तो वजीर कहता था कि बादशाह सलामत इसमें भी कोई खैर होगी, इसमें भी कोई खैर होगी। तो एक दिन बादशाह ने कहा कि मेरी जो है ना उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। वजीर ने कहा बादशाह सलामत इसमें भी कोई खैर होगी, बादशाह को तो बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई और ये कहता है कि इसमें भी खैर होगी। बादशाह ने जो है उसको जो है ना वो जेल में भिजवा दिया और अब वो कई साल जेल में रहा। एक दिन बादशाह जो है उसने सफर किया, शिकार वगैरह के लिए गया और जो अपने साथी थे उससे वो बिछड़ गया, दूर रह गया, और जहां पे वो पहुंचा तो वहां जो थे कुछ जंगली किस्म के लोग थे, लेकिन ये कि वो अपना कोई दिन मना रहे थे अपनी इबादत का या कोई मेला वगैरह, तो और उनकी उनकी ये एक ये भी उनका ये काम था उस दिन का कि वो किसी इंसान को जो है वो अपने बुत या अपना वो जो मंदरगाह या जो भी उनकी वो इबादत गाह थी उसके ऊपर किसी एक इंसान को कुर्बान करते थे। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है कि हमें अपनों की बजाय बाहर से एक आदमी मुझे मिल गया, और वो उनको तो नहीं पता था ये बादशाह है, तो उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ कर कहा कि इसको जो है हम अपने बुत के जो है वो भेंट चढ़ाएंगे। तो इतने में जो अब वो बादशाह तो परेशान हुआ कि मैं तो अच्छा फंसा, तो इतने में जो है वो उनका जो पादरी था जो उनका जैसे मजहबी पेशवा था वो आगे आया और उसने उसका पूरा जायजा लिया जिस्म का, तो कहने लगा कि ये जो है ना ये भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है, और सही और सालिम जो है वो इंसान का होना जरूरी है। तो अब बादशाह कहने लगा कि वाकई मेरी उंगली के कटने में भी हिकमत थी, आज मेरी समझ में आई। वो इतने साल गुजरने के बाद और वजीर को जेल में भेजा है, वह इतने साल हो गए थे कभी उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ था, आज उसने कहा कि अगर मेरी उंगली कटी हुई ना होती तो ये तो मुझे जिबा कर देते, मुझे भीड़ चढ़ा देते, मुझे कोई पूछ, मेरा कोई पुरसाने हाल भी नहीं था। और फिर वो वापस आया और फिर मतलब जब फिर उसने वजीर को तलाश किया, वजीर को जब ढूंढा और उसको बुलाकर उसको कहा कि बहुत ही उसने माजरत की, बहुत ही उसने माफी मांगी कि मैंने जो है वो तुम्हें नहा इतनी देर जो है वो जेल में रखा, तो तुम मुझे माफ कर दो ना कि तुम्हें मैंने इतनी देर जो है वो जेल में रखा। तो उसने कहा कि बादशाह इसमें भी कोई हिकमत होगी कि आपने मुझे जेल में रखा तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। उसने आगे से कहा कि बादशाह सलामत मैं आपके साथ साथ रहता था और ये जो कुर्बानी करने का दिन था जो आप पकड़े गए तो उस दिन जो है वो आपकी तो उंगली कटी हुई थी तो आपकी बजाय वो मुझे पकड़ते और फिर वो कुर्बान कर देते, तो इसमें भी कोई खैर है कि उस दिन मैं अगर जेल में ना होता मैं आपके साथ होता मैं जो थी उनकी कुर्बान गा के दीन चढ़ जाता और आप जो थे वो बच गए, तो इसमें भी कोई खैर होगी। तो कितनी मतलब ये जो कहानी है ये कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, लेकिन असल बात क्या है, यकीनन जो कुछ भी अल्लाह ताला के फैसले हैं ना इसमें कोई खैर है। तो आइए आज नई जिंदगी की इब्तदा करते हैं, ईमान की जिंदगी और अकायद की मजबूती की जिंदगी, सब्र और इस्तकामत की जिंदगी, और इस बात की कि अल्लाह ताला तू हकीम मुतलिक, तू खैर का मजमुआ, तेरे फैसलों में खैर, तेरा इल्म ला महदूद और मैं मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, तो अल्लाह ताला तू मुझे सब्र और इस्तकामत दे दे, ये दुनिया की छोटी सी जिंदगी में जितने मामलात हो रहे हैं तो इन पर तू मुझे जो है ना तो सब्र और इस्तकामत दे दे और तेरे फैसलों में जो है मैं राजी हूं जो भी तू मेरे लिए फैसले कर दे। हम खैर तो मांगे लेकिन अल्लाह के फैसलों पे राजी हो जाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो एक तरबियती सफर था, इस तरबियती सफर की जो कहानी मुझे और आपको सुनाई गई ये क्या है कि हिकमत के असरार, हिकमत के राज जो है वो जिंदगी के वाकयात बनकर सामने आते हैं। और आप देखें कि जिस तरह से सामने आते हैं उसमें ऐसे नहीं है कि जाहिर हो जाए कि अंदर हकीकत छुपी भी क्या है, पिन्हा क्या है। इसीलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम सबर नहीं कर पाते और बनी इसराइल जो थे वो बड़ी ही कमजोर कौम थी, बड़ी बोधी कौम। और अब आप देखें कि दुश्मन से साबका था तो वो भी बड़ा ही जब्बार और कहार, और अब अल्लाह ताला की हिकमत, इसकी अल्लाह की हिकमत ने ये तकाजा किया कि सबर की कैफियत जो है वो इनके अंदर राशि की जाए ताकि ये मुखालिफ हालात का बड़े अज्म और जज्म के साथ जो है वो मुकाबला कर सकें। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम से भी कहा कि नहीं, एक मेरा बंदा है जिसके पास ज्यादा इल्म है और खास इल्म उसको जो है वो अता किया है। तो अब ये इसका मकसद क्या था कि तरबियत के और सबर और रजा के अहम पहलू जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के सामने जो हैं वो आ सकें। तो आइए आज से अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लें कि अल्लाह ताला इस दुनिया में जब नवाजते हैं और जब महरूम करते हैं, जब बीमारियां देते हैं और जब सेहत देते हैं, जब औलाद से दूर कर देते हैं और जब औलाद अता कर देते हैं, जो भी खुशियां और गम हैं, जो भी तकलीफें और मुसीबतें हैं, जो भी फूल और कांटे हैं, जो भी तलखियां और शेरीनियां हैं, यकीनन इसमें मेरे और आपके लिए कोई खैर है। और बिल्कुल उसको जो है हम समझे, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको जितना ज्यादा ऊंचा मकाम देना चाहते हैं, जिसको नवाजना चाहते हैं, जिसके गुनाहों को माफ करना चाहते हैं, तो उसको तकलीफों परेशानियों के अंदर उसकी भट्टी के अंदर जो है वो झोंक देते हैं। फिर वही बात कि तकलीफें परेशानियां मांगनी तो नहीं चाहिए लेकिन जब आ जाएं तो तस्लीम और रजा का पेकर बन जाना चाहिए। फिर जो है सब्र और शुक्र का जो है वो बंदा खाकी बन जाना चाहिए। तो ये है खैर कसीर का खजाना जो मुझे और आपको अपने अंदर जो है वो पैदा करना है। और दूसरी बात जो हमारी यहाँ पे समझने वाली है और वो ये है कि हम सब जो हैं इस बात पर भी गौर करते जाएं कि खिजर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ भी किया तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि फ़ारादा रब्बुका, है ना, कि तेरे रब का ये इरादा था। और तीसरी बात यह है कि हम में से अक्सर नादान इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम जो थे वो फरिश्ते थे या कि इंसान थे, है ना। हम लोग जो है वो ऐसी बातों पर बहस करते रहते हैं कि जिससे अमली जिंदगी में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असाबे कहा तीन थे कि 13 थे, उनकी तादाद कितनी थी, और भूल जाते हैं कि असाबे कहफ ने जो है वो मुश्किल हालात में, परेशानी के औकात में अल्लाह ताला से क्या दुआ की थी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वा हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सही बात है ना। और सब मुश्किलात में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, और हम सब की जिंदगियां मसाइल और परेशानियों के अंदर हैं। दुनिया में इंसान इम्तहान के लिए पैदा किया गया, तो इम्तहान तो अल्लाह लेगा ही ना, किसी का दुख का, किसी का सुख का। तो उसी में अपने लिए खैर ढूंढना, ये कौन लोग ढूंढते हैं, जो जिनके अकायद अच्छे होते हैं, जो सब्र और रजा का पैकर बन जाते हैं, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाते हैं। और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो हैं, जिन्होंने ये बात कही कि ए मूसा, ये थी उन चीजों की हकीकत जिन पर तू सब्र ना कर सका, उनकी हकीकत उनको बताई। अब आप देखें, जाहिरी नजर को तो हकीकत नजर नहीं आ रही ना। तो इससे जो है अहम बात क्या है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो अब्दिना का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना। तो अब्दिना के क्यों अल्लाह ताला ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैंने अपने बंदों में से एक बंदे को जो है वो खास इल्म जो है वो अता किया है ना। ये आयत 65 में आप पढ़ चुकी, फवजदा अब्दम मिन इबादिना, मेरे बंदों में से एक बंदा, अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया ना। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। और कुरान मजीद में आप एक बात याद रखें कि ये अब्द का लफ्ज जो है अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल किया है, कि अल्लाह ताला अब्द का लफ्ज कहीं जो है वो फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका ये नहीं मतलब कि अब फरिश्ता जो है वो फरिश्ता नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का गुफ्तगू का जो है वो एक अंदाज है। और हमारा काम ये है कि हम जो है ऐसे ही ना जो है वो इन्हीं बातों पर जो है वो बहस करते जो है वो ना रह जाएं, बल्कि इससे भी आगे जो अहम बात है उसके ऊपर जाएं। जैसे मसलन आप देखें, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि फरिश्तों के बारे में, वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा, के जो अल्लाह के बंदे हैं, जो फरिश्ते हैं, लोगों ने उनको जो है वो अल्लाह की बेटियां कह दिया, इनासा इनासा मुअन्नस है ना, उनको मुअन्नस जो है वो बना लिया। तो इसी तरह जो है वो हदीस में खिजर अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो रजुल का लफ्ज आया है। और फरिश्ते जब भी इंसानी शक्ल में आए तो हमेशा मर्दों ही की शक्ल में आए ना। हाँ, तो कुरान में फरिश्तों के लिए रजुल का लफ्ज भी आया है। तो बहरहाल बात का निचोड़ क्या है कि खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में बाज लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि वो नबी हैं, और बाज कहते हैं कि वो वली हैं, और बाज कहते हैं वो नबी और वली नहीं हैं। अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि वो फरिश्तों में से कोई एक थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको खास अपना ये काम सौंपा था। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनकी क्या वो क्या थे, लेकिन असल बात क्या है कि अल्लाह ताला ने उनको वो इल्म अता किया था जो कि पैगंबरों को नहीं दिया, और पैगंबरों को जो इल्म दिया जाता है उनको नहीं मिलता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करें कि अगर वो सब्र करते तो हमें और वाकयात जो है वो पता चलते, और हकीकतें जो हैं वो हमारे सामने जो है वो आती। तो इससे क्या बात पता चलती है कि सिर्फ जो है ये दो तीन वाकयात ही नहीं, बेशुमार वाकयात दुनिया में ऐसे सरजद होते हैं, और ऐसे वाकयात जो हमारी जाहिर की आंखों को में जो है वो पेश आते हैं, जो जिनकी हकीकत हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला के कारिंदे जो हैं वो अल्लाह के हुक्म पर जो हैं वो उसको जो है वो शर अंजाम जो है वो देते रहते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता करे, और हम सब जो हैं वो नेकियों में आगे बढ़ने वाले हों, और अल्लाह के फैसलों पर जो हैं وہ راضی ہونے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.